तो आप सच में तारीफ नहीं करेंगे?
बिल्कुल नहीं, और मुझे अपनी बातें रिपीट करने की आदत नहीं है, और ना ही फालतू वक्त है तुम्हारे साथ बहस करने के लिए। तो जाओ, जाकर अपना काम करो और मुझे भी सुकून से रहने दो।
ठीक है फिर, बहुत गंदा खाना बना था ना, तो अब से रोज यही घटिया खाना खाएंगे आप।
और मेरे खाने को घटिया कहा ना, आपको तो अभी मैं बताती हूँ इसका अंजाम। शान भौंय से कोड़े आरवी को घूरने लगा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि अब क्या करने वाली है। पर वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही आरवी ने उसकी बाँह पर कस के चीटी काट ली। शान के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। अगले ही पल आरवी ने उसके हाथ को छोड़ दिया और शान के कुछ कहने से पहले ही गुस्से में भुनभुनाते हुए दूसरी तरफ चली गई। शान बेचारा अपना हाथ मसलता रह गया, जो लाल पड़ गया था।
दोबारा मेरे खाने की बुराई की तो खैर नहीं आपकी, समझ लीजिए।
आरवी की गुस्से भरी धमकी सुनकर शान ने घूरते हुए उसको देखा तो आरवी मुंह बनाकर उसकी तरफ पीट करके लेट गई। शान ने अपनी बाह पर देखा जहां लाल निशान बन चुका था, और फिर आरवी को देखते हुए मन ही मन बोला, ये अचानक ये सीता से गीता कैसे बन गई? इतनी खतरनाक तो नहीं थी पहले, फिर अचानक कौन सा भूत घुस गया इसके अंदर? शान ने बुरा सा मुंह बनाया और उसकी तरफ पीट करके लेट गया। करीब आधे घंटे बाद आरवी ने सर घुमाकर उसको देखा तो शान स्थिर सो रहा था। आरवी धीरे से उठी और उसके पास आ गई। उसने ड्रॉअर से क्रीम निकालकर उसकी बाह पर लगाने लगी, फिर प्यार से उसके गाल को छूकर बोली, इतने खडूस, बदतमीज और अकड़ू क्यों हैं आप? मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से इतना सब बनाया और आपने झूठे मुंह तारीफ में एक शब्द तक नहीं कहा, उल्टा बुराई कर दी। इतने दिनों बाद वापस आए और ये जानने के बावजूद कि मैंने आपको बहुत मिस किया, आप सारा वक्त बस मुझसे लड़ते झगड़ते रहे, न प्यार के दो बोल बोले और न ही दो मिनट के लिए अपने सीने से लगकर अपने बेचैन दिल को करार देने दिया। बहुत मज़ा आता है ना आपको मेरा दिल दुखाने में, मुझे तड़पाने में। देखिए, एक दिन मैं रहूंगी नहीं आपके पास, तब आपको मेरी कदर पता चलेगी। आरवी कुछ पल एकटक उसको देखती रही, फिर उसके चेहरे की तरफ झुकने लगी। शान, जो शायद सोया नहीं था, बस आंखें बंद किए लेटा आरवी की बातें सुन रहा था। उसको अपने चेहरे पर आरवी की गर्म सांसें महसूस हुईं तो दिल जोरों से धड़क उठा और उसने अपने जबड़े भींच लिए। आरवी तड़पा रही थी उसको, बार बार यूं उसके करीब जाकर मजबूर कर रही थी उसको अपनी सख्ती छोड़ने पर, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। शान ने खुद को कंट्रोल कर लिया और भावहीन सा लेटा रहा। कुछ सेकंड बाद उसको आरवी के लबों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस हुआ तो उसका मन एकदम शांत हो गया। आरवी ने देखा कि कोने में थोड़ी जगह थी तो उसने शान की एक बाह पर अपना सर रखा और उसे चिपक कर लेटते हुए उसकी दूसरी बाह को खुद पर रख दिया। जगह कम थी तो गिरने का डर था, इसलिए उसने अपनी बाहों से शान को कस के पकड़ लिया। आरवी की गर्म सांसें शान की गर्दन और चेहरे पर पड़ रही थीं और बेचारा बड़ी ही मुश्किल से वहां लेटा हुआ था। थोड़ा हैरान था आरवी की इस हरकत से, तो कुछ परेशान भी था कि कहीं आरवी नीचे न गिर जाए, और इसी डर के चक्कर में उसने आरवी को कस के पकड़ लिया। आरवी के लब मुस्कुरा उठे और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद जब शान को इसकी सांसों के गहरे होने का एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और आंखों के सामने सीधे आरवी का चेहरा आ गया, जिस पर सुकून पसरा हुआ था। आरवी को देखते हुए शान ने मन ही मन कहा, ये अचानक ये सीता से गीता कैसे बन गई? इतनी खतरनाक तो नहीं थी पहले, फिर अचानक कौन सा भूत घुस गया इसके नंबर? वो उलझा हुआ सा आरवी को देखने लगा। शान को एहसास ही नहीं हुआ कि आरवी ने उसको खुद में इतना उलझा दिया कि अपना गुस्सा और नफरत वो इस पल में भूल ही गया था, और हमेशा आरवी को खुद से दूर करने वाला शान उसको अपनी बाहों में भरकर लेटा था, वो भी तब जब वो जानता था कि आरवी जाग रही है, वरना ये अक्सर वो उसके सोने पर करता था ताकि आरवी को पता न चले। शान आरवी को साथ लेकर थोड़ा अंदर को हो गया, फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर चाहता तो वो भी यही था, एक महीने की दूरियों के बाद इस सुकून की तलब तो उसे भी लगी थी, जिसे आरवी ने बिन कहे ही तृप्त कर दिया था। अगली सुबह जब आरवी की नींद खुली तो शान वहां नहीं था। रात की बात याद करते हुए आरवी खुद में ही मुस्कुराई, फिर कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। नहाने के बाद शान के कल के भीगे कपड़े बाहर सूखने को डाल दिए और रोज की तरह बालों को बांधकर मांग में हल्का सा सिंदूर लगाकर नीचे चली आई। जाते जाते एक नज़र जिम में जरूर डाली थी उसने, जहां बनियान पहने शान कसरत करके पसीना बहा रहा था। नीचे जाकर उसने पहले पूजा की, फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी। कुछ घंटे बाद जूस का ग्लास ट्रे में रखे वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। एक बार फिर उसके टारगेट पर शान था, पर अब वो क्या करने वाली थी ये सिर्फ वही जानती थी। लबों पर सौम्य सी मुस्कान सजाए आरवी ने जिम में कदम रखा। उस वक्त शान ने बस लोअर पहना हुआ था और टाल से अपने बदन के पसीने को पोंछ रहा था। आरवी को देखकर भी उसने नजरअंदाज कर दिया, पर आरवी ने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। उसने ट्रे वहां रखी टेबल पर रखी और शान के हाथ से टाल लेने लगी। शान ने चौंकते हुए उसको देखा और अगले ही उसका हाथ झटकते हुए बोला, दूर रहो मुझसे, इतनी बार कह चुका हूँ, प्यार से बात समझ नहीं आती तुम्हें। आरवी ने उसको देखा, फिर उसके गर्दन में डले टाल के दोनों छोर को पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लिया, फिर उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए बोली, पहले प्यार से बोलिए तो सही, फिर बात ना मानी तो कहिएगा। आरवी, अपना ये नाटक बंद करो, मैं कुछ नहीं कह रहा तो तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि आग से खेलते खेलते अपना हाथ जला बैठो। शान के चेहरे पर सख्त भाव मौजूद थे। वहीं उसकी बात सुनकर आरवी ने सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए कहा, तो फिक्र हो रही है आपको मेरी? बिल्कुल नहीं, मैं बस तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि दूर रहो मुझसे, वरना मैं गुस्से में कुछ ऐसा कर जाऊंगा जो अभी मेरे मकसद के लिए ठीक नहीं। तो मत होने दीजिए, ठीक? मेरा आपके मकसद या बदले से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अपने पति से मतलब है और मैं जो कर रही हूँ वो अपने पति के लिए कर रही हूँ। खैर छोड़िए ये बातें, लाइए मैं अपना पत्नी धर्म निभा लूं, वरना बाद में आप ही कहेंगे कि मुझे आदर्श पत्नी के फर्ज निभाने भी नहीं आते। आरवी ने शांत लहजे में जवाब दिया और उसके हाथ से टावल लेकर उसके बदन को पोंछने के लिए आगे बढ़ी, पर शान उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ गया। पीछे से आरवी ने आवाज दी, अरे कहाँ चले ऐसे नंगे पुंगे, किसी ने देखा लिया तो आपकी हीरो जैसी बॉडी को नजर लग जाएगी। शान नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा, तो आरवी ने ट्रे उठाकर उसके पीछे पीछे आते हुए फिर से कहा, अरे आप तो नाराज होकर चल दिए, चलिए मत पुछवाइए मुझसे अपना पसीना, पर जूस तो पी लीजिए अपना। शान अब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो एकदम से रुका और पीछे पलट गया। उसकी तरफ बढ़ती आरवी भी रुक गई और मुस्कुराकर ट्रे उसकी तरफ बढ़ा दी। अगले ही पल शान ने गुस्से में चीखते हुए कहा, बंद करो अपना ये ड्रामा। शान ने गुस्से में ट्रे पर हाथ मार दिया, जिससे ट्रे के साथ साथ जूस से भरा ग्लास भी जमीन पर जा गिरा और चकनाचूर हो गया। पूरे जगह जूस और कांच फैल गया। आरवी सर झुकाकर नीचे देखने लगी, जबकि शान गुस्से में वहां से चला गया। आरवी ने गहरी सांस छोड़ी और लग गई सफाई में। कांच उठाते हुए एक कांच का टुकड़ा उसकी उंगली में लग गया और खून आने लगा, पर आरवी ने उसकी परवाह नहीं की। आंखों में नमी उतर आई और वो सर झुकाए सब साफ करती रही।
कुछ देर बाद जगह साफ करके और कांच के टुकड़े डस्टबिन में डालकर वो थके कदमों से रूम की तरफ बढ़ गई। उंगली से खून टपक रहा था, उसको वो दूसरे हाथ से नीचे गिरने से रोक रही थी। वो रूम में आई तो बाथरूम बंद था। आरवी पूल साइड चली गई और अपनी लगी को घुटने तक करके पूल में पैर डालकर पीछे की तरफ फ्लोर पर लेट गई। हाथ की फ्लोर पर था और खून अब भी बह रहा था। आंखों में आई नमी उसकी कनपट्टी को भिगोने लगी, फिर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। बहुत रोना आ रहा था, पर वो रोना नहीं चाहती थी, फिर भी आंसू बह रहे थे। शान का चिल्लाना या सब गिराना उसको इतना बुरा नहीं लगा था जितना उसका एक बार भी उसको पलटकर ना देखने की वजह से वो आहत हुई थी। उसने आंखें खोलकर आकाश में छाई बादलों को देखते हुए खुद से ही कहा, कहते हैं प्यार करते हैं, ये कैसा प्यार है उनका कि उन्हें मेरे दर्द, मेरी तकलीफ से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। बस यही चंद शब्द निकले उसके लबों से और वो खामोश से आसमान को देखने लगी। फिर उसने खुद को संभाला और उठकर रूम में चली आई। शान उसी वक्त बाथरूम से निकला था और सिर्फ टॉवल में था, पर आरवी ने उस पर रत्ती भर ध्यान नहीं दिया और सीधा बाथरूम में घुस गई। शान को ये बात अजीब लगी, जब से वो आया था आरवी उसके आगे पीछे घूम रही थी, उसको परेशान कर रही थी, उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी, पर अभी उसने उसको एक नज़र देखा तक नहीं। शान ने अपना सर झटका और आगे बढ़ने लगा, तभी उसका ध्यान जमीन पर गिरे खून की बूंद पर पड़ा। आरवी ने चोट को दबाकर रखा था, फिर भी खून थोड़ा थोड़ा बह रहा था और एक बूंद यहाँ भी गिर गई थी। खून देखते ही शान का माथा ठनका, एकाएक ध्यान आया कि अभी अभी आरवी यहाँ से गुजरी थी और अब तो उसके माथे पर बल पड़ गए। एक सेकंड में वो सारा माजरा समझ गया और सीधा बाथरूम की तरफ भागा। अंदर घुसा तो आरवी वॉश बेसिन के सामने खड़ी नजर आई और हाथ को पानी में डाला हुआ था। शान तुरंत उसके पास पहुंचा और उसकी कलाई को पकड़कर उसको अपनी तरफ घुमा लिया। आरवी ने चौंकते हुए उसे देखा, पर शान का सारा ध्यान उसकी हथेली पर था, जो उंगली कटी थी वहां से अब भी हल्का हल्का खून रिस रहा था। शान ने जल्दी से टैप बंद किया और आरवी की कलाई थामे उसको बाहर लेकर चला आया। उसने आरवी को बेड पर बिठाया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फिर कॉटन में डेटॉल लगाकर उसके जख्म को भूख मार मार कर साफ करने लगा। आरवी का सारा ध्यान शान पर था, जो दर्द उसे हो रहा वो शान के चेहरे पर झलक रहा था और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। शान ने एक शब्द नहीं कहा, बस उसके जख्म को साफ करके उस पर दवाई लगाकर पट्टी कर दी। टू बी कंटिन्यूड।